जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Krishna
जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नितय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। श्री दीपावली महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको दीपावली के महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हम सबका जीवन हम सबका हृदय भक्ति के दीप से प्रज्वलित होगा और इसी दीप को हम बांट भी पाएंगे समाज में दुनिया में। ये दीप ज्ञान का प्रतीक है, शुभ या मंगल का प्रतीक है और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम यह अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो अग्नि या दीप प्रज्वलित की जाती है। कभी आग को बुझाया नहीं जाता किसी अच्छे कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय। तो दीप जलाकर फिर हम जो भी हमारा काम है वो कर लेते हैं। आजकल ये प्रथा कुछ बदल गई है, खास करके जन्मदिन पे ये एक ऐसे एक रिवाज बन गई है कि कोई केक बना ले और जितने साल व्यक्ति के हुए हैं उतने मोमबत्तियां जो हैं वो केक में डाल लें और फिर दम लगा के हयशा करके कुछ बुझा देते हैं। और वैसे अपने जीवन में मंगल का आह्वान करना है तो अग्नि जलानी चाहिए। तो दीप प्रज्वलित कीजिए, मोमबत्ती जलाइए, कोई बात नहीं, बुझाने की क्या आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त फिर जब हम फूंक रहे हैं, और एक फूंक में तो नहीं होगी ना, चार पांच दस फूंकते रहेंगे और हमारा महाप्रसाद सबको दे देंगे केक के द्वारा। फूंकते हैं तो फिर मुंह से तो निकलेगी कुछ। ये सब आदतें अच्छी नहीं है। जन्मदिन आदि को मनाना है तो दीप प्रज्वलित करें अवश्य, कोई बात नहीं, परंतु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम मंदिर आए, घर में कोई भक्तों को निमंत्रित करें, कीर्तन करें, प्रसाद का वितरण करें इत्यादि, इस तरह से जन्मदिन को मनाना चाहिए। और किसी भी अच्छे दिन को मनाने के लिए दीप प्रज्वलित अवश्य करते हैं, परंतु दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं ये भी जानना आवश्यक है। आजकल पहले की तुलना में दीप लोग कम आजकल जलाते हैं। कल रात को भी मैं देख रहा था कि इतने सारे दीप नहीं जितने पिछले साल थे। 10 साल पहले की बात तो दूर रही, पिछले साल जितने दीप मुझे दिखाई दिए थे इस साल नहीं दिखाई दे रहे थे। तो लोग दीप का प्रज्वलन नहीं करते हैं आजकल। इसके पीछे कारण क्या है वो दूसरी बात है, कम से कम दीप तो पहले प्रज्वलित करते थे, वो आजकल नहीं करते हैं। और दीपावली के दिन प्रातः काल में उठना चाहिए, प्रातः काल में उठ के फिर स्नान करना चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये सब चीजें आज लोगों को नहीं पता है। वैसे इस दीपावली के दिन पर स्नान करना एक महत्वपूर्ण है, एक प्रथा बताई गई है। आप में से कितने लोगों बचपन में याद होगा कि उठते थे तो जबरदस्ती उठा के तेल का मालिश किया जाता था, याद है? कितने भक्तों को याद है, हाथ ऊपर कीजिए। आजकल कितने लोग ऐसे करते हैं, बहुत कम। तो ये सब आवश्यक है। वैसे तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपावली दिने वसेत। तो दीपावली के दिन पर जल में गंगा और तेल में लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, अलक्ष्मी परिहारार्थम अभ्यंग स्नानम आचरेत। तो ऐसे प्रातः काल में उठ के अभ्यंग या तेल से मालिश करके फिर स्नान करना चाहिए। और उसके बाद तथा आभरणम वस्त्रम धारयेत सर्व संपदे। फिर अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र पहनने चाहिए इत्यादि, अपने आप को अच्छा करना चाहिए, दिखने में अच्छा करना चाहिए, मुख्य तिलक धारण करके। तिलक के बिना तो निकलना ही नहीं चाहिए घर से, वैसे भी नहीं निकलना चाहिए, और खास करके ऐसे उत्सव के दिन पर। तो ये सारी प्रथाएं अब लुप्त होती जा रही हैं। तो इसलिए हमें कम से कम इस संस्कृति को, इस प्रथा को बनाए रखना चाहिए और इस बात को फैलाइए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बताइए कि आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए घर में, भले बिजली के हों या तेल के दीप हो, मिट्टी के दीप हो, लेकिन दीप होना आवश्यक है। तो दीप भले लोग जलाएं, परंतु क्यों जलाते हैं पता नहीं, केवल एक दीपों का उत्सव है तो ठीक है, इसको भी अधार्मिक, मतलब इसके अंदर जो एक धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, भक्ति है, उसको भी निकाला गया है। बस हमें चाहिए पटाखे फोड़ लें और बस हम कुछ मिठाइयाँ खा लें और फिर बादाम अखरोट लोग को आगे एक दूसरे को देते हैं, काजू वगैरह एक दूसरे को देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, बस इतना ही है। तो इसके पीछे जो महत्व है ये भी सब हमें समझ लेना चाहिए। उत्सवों के पीछे यदि हम जो मूल कारण है उसको नहीं यदि हम जानते हैं तो फिर धीरे धीरे से ही उत्सव मनाने बंद हो जाएंगे। वास्तव में दीपावली, ये दीप और आवली, आवली अर्थात जो एक एक के बाद एक बहुत सारे रखे जाते हैं, रत्नावली, दीपावली, मुक्तावली, तो दीपावली का उत्सव वैसे साधारणतः भारत में 5 दिन का होता है, ऐसे लोग मानते हैं। और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष के भी 2 दिनों में, 3 दिन कृष्ण पक्ष के, 2 दिन एक अमावस्या और फिर शुक्ल पक्ष के 1-2 दिन। वैसे गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा के बाद वाले दिन से करते हैं और हमारा जो महीना होता है वो उसका अंत पूर्णिमा की तिथि से होता है। इसलिए हम, हमारी जो दिनदर्शिका है वो पूर्णिमांत दिनदर्शिका है। पूर्णिमांत, पूर्णिमा में महीना का, महीने का अंत होता है। कई लोग हैं जो अमांत दिनदर्शन दिनदर्शिका का उपयोग करते हैं, अमांत अर्थात अमावस्या पे उनके महीना का, महीने का अंत होता है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि अभी जो पक्ष हुआ कृष्ण पक्ष, जो अभी आज के दिन समाप्त हो रहा है, अमावस्या है आज, तो हम लोग इसे कार्तिक महीना मानते हैं, कार्तिक महीने का पहला पक्ष मानते हैं। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो कल से कार्तिक महीने का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि गणना में थोड़ी अंतर है। तो खैर, हमारे लिए तो शरद पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक महीना शुरू होता है, क्योंकि जैसे उस दिन चर्चा की थी हमने शरद पूर्णिमा के दिन, कि शरद पूर्णिमा और कार्तिक महीने का संबंध बहुत घनिष्ठ है और इसलिए कार्तिक महीने का शरद पूर्णिमा के बाद ही शुरू होना ये उपयुक्त है। और बल्कि कार्तिक, शरद पूर्णिमा भी कार्तिक महीने के उत्सव में ही माना जाता है। तो खैर, इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से ये प्रारंभ होता है उत्सव। त्रयोदशी को है धनतेरस, साधारण भाषा में कहते हैं धनतेरस। धनतेरस में ज्यादातर लोग केवल इसे बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं 5 दिन। तो धार्मिकता का प्रयोग धन के लिए करते हैं, इसलिए धन बहुत शुभ होता है लोगों की गणना में, तो धनतेरस, धन, तो धन के लिए सब लोग ऐसे करते, लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी देवी आखिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है तो इनकी उपासना करना बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी की उपासना करते करते भगवान नारायण को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल लक्ष्मी देवी के पीछे जाएं और कहें हमें धन दीजिए, धन दीजिए, और उनके पति असली धन देने के लिए तैयार हैं हमें, जो भक्ति है। तो असली धन को छोड़कर, असली धन के प्रदाता भगवान विष्णु या कृष्ण को छोड़कर फिर हम लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं संसार का धन मांगने के लिए। लक्ष्मी देवी हमें भक्ति का धन भी प्रदान कर सकती हैं। तो ठीक है, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हैं आप बर्तन खरीद लीजिए, शुभ माना जाता है, सोना चांदी खरीदना है खरीद लीजिए, ठीक है, परंतु लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, सीताराम को साथ में पूजिए, फिर वास्तव में मंगल का आह्वान घर में और सारे समाज में होगा। तो वास्तव में धनतेरस या धन त्रयोदशी, और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसको लोग नहीं जानते हैं या उसको भूल गए हैं, और वो है धन्वंतरी त्रयोदशी। धन्वंतरी हैं भगवान विष्णु के अवतार, शक्त्यावेश अवतार। जब देवों ने और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया था अमृत निकालने के लिए, तो उस समय बहुत से व्यक्ति और बहुत से वस्तुएं उत्पन्न हुई मंथन के द्वारा। और इस दिन पर ऐसे बताया जाता है कि श्री धन्वंतरी उत्पन्न हुए उस समुद्र मंथन से। एक हाथ में, उनके एक करकमल में अमृत का कलश था, जिस अमृत के पीछे सारे देव और असुर पड़े हुए थे, और दूसरे हाथ में उनके थे आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेद शास्त्र। ऐसे बताया जाता है कि आयुर्वेद ये शास्त्र जो है ये धन्वंतरी से प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी वेद है, वो तो भगवान से आता है अंततः। इसलिए धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं, और इसलिए जहां भी बड़े बड़े या छोटे भी आयुर्वेदिक अस्पताल होते हैं या चिकित्सालय होते हैं, तो वहां पर धन्वंतरी का चित्र या धन्वंतरी की मूर्ति होती है अवश्य। तो हम समझ सकते हैं कि ये वास्तव में आयुर्वेद का पालन ठीक से करना चाहते हैं, कम से कम एक परंपरा और प्रथा को कुछ सम्मान दे रहे हैं धन्वंतरी को एक स्थान दे के। तो धन्वंतरी का आविर्भाव इसी दिन पर, त्रयोदशी के दिन पर हुआ था, इसलिए ये धन्वंतरी त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी के बाद फिर चतुर्दशी। वैसे धन्वंतरी के धनतेरस के दिन ऐसे प्रथाएं बहुत सी हैं, कहानियां बहुत सी हैं जो बताई जाती हैं पुराणों में और अन्य जगह। ऐसे बताया जाता है कि एक बार एक राजकुमार था, उसकी पत्रिका में ऐसे बताया गया कि विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली थी। तो उसके नवविवाहित जो पत्नी है, उसने क्या किया, जितने भी उसके जो स्वयं के जो आभूषण थे, रत्न आदि थे, और राजकुमारी थी तो बहुत सारा धन था, तो सारे उठा के दरवाजे में रख दिए। क्यों रख दिए, जाके यमराज जब आए उन आभूषणों की चमक से वो देख नहीं पाएंगे कि इसके पीछे कौन है, तो वो देख नहीं पाएंगे कि उस लड़की के पति वहां पर बैठे हैं, तो नहीं ले पाएंगे। तो इतने सारे ढेर करके एक पहाड़ बना के सारे अपने आभूषण वहां पर रख दिए दरवाजे पे। तो ठीक समय पर यमराज आए अपने वाहन पर सवार होकर, और यमराज ने देखा मैं देख नहीं पा रहा हूं क्या हो रहा है, यहां पे इतने सारे आभूषण, सोना, ये वो सब है कि इसके कारण कुछ दृष्टि दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। तो वहीं पर जाके बैठे रात भर उसके ऊपर, आभूषणों के ऊपर, और ऐसे सारी रात बीत गई और मुहूर्त चला गया। फिर यमराज को वैसे ही वापस जाना पड़ा और उस राजकुमार की जान बच गई। तो इस तरह से उस राजकुमारी ने अपने पति का जीवन इस तरह से बचाया। ऐसे एक कहानी है, एक लोक कथा है धनतेरस के संबंध में। तो खैर, जीवन हो या मृत्यु हो, लंबी आयु हो या छोटी आयु हो, हमें चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने। तो ये सारी कथाएं पुराणों में आदि जो पाई जाती हैं, उनके ठीक है, उनको स्वीकार कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, सब छोटी लाभदायक होती हैं, परंतु इनके पीछे जो मूल एक भक्ति का उद्देश्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी। इस बार वास्तव में चतुर्दशी लुप्त हो गया है तिथि। तो दिन दर्शिका के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये कहा जाए कि एकादशी और विष्णु तत्व आविर्भाव दिवसों के अतिरिक्त जितने भी अन्य तिथियां हैं, वो सूर्योदय से पहले प्रारंभ होने चाहिए, तब जाकर वो दिन उस तिथि से संबंधित माना जाता है। यदि तिथि सूर्योदय के बाद में प्रारंभ होती है तो फिर वो तिथि अगले दिन मानी जाती है, परंतु सूर्योदय के बाद प्रारंभ होकर अगले सूर्योदय के पहले वही तिथि समाप्त हो गई तो क्या हो जाता है, तिथि लुप्त हो जाती है। तो इसलिए इस बार मैं पंचांग देख रहा था, कल काफी गहराई से देख रहा था, और शायद हमारे वैष्णव दिनदर्शिका में भी तो इधर उधर कुछ हुआ है, क्योंकि स्थान के हिसाब से बेलगाम के दृष्टि से मैंने देखा था तो वास्तव में चतुर्दशी लुप्त हो गई है, क्योंकि चतुर्दशी की समाप्ति जो है ये सूर्योदय के पहले हो जाता है। तो खैर, इसलिए फिर भी उसको फिर उसी दिन पर वहां मनाते हैं तो चतुर्दशी। परंतु एकादशी की बात जब आती है वो अलग है। एकादशी जब सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है तो अवश्य एकादशी अगले दिन पर मनाई जाती है। एकादशी यदि सूर्योदय के पहले शुरू होती है परंतु अरुणोदय के बाद में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के बाद में शुरू होने के बाद, तब वो विध या अशुद्ध एकादशी मानी जाती है। उस दिन हम नहीं मनाते हैं गौड़ीय परंपरा में, बाहर लोग मनाते होंगे लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था हमें शुद्ध एकादशी का पालन करना चाहिए, और शुद्ध एकादशी वो है जो कि ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ से भी शुरू होता है, उसे अरुणोदय तिथि कहते हैं। अरुणोदय के समय कौन सी तिथि है उस समय, तो ये शुद्ध एकादशी है। तो खैर ये बात रही, तो चतुर्दशी इस बार लुप्त हो गई। तो चतुर्दशी में क्या हुआ, इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तो एक बार उनको एक संदेश आया। क्या संदेश था, सो एक राक्षस असुर था जिसका नाम था नरकासुर या भौमासुर। यह भौमासुर स्वयं भगवान का ही पुत्र था। जब भगवान श्री कृष्ण ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठा दिया था, तो जब अपने दंष्ट्रों से वराह देव ने पृथ्वी देवी का स्पर्श किया तो फिर पृथ्वी देवी गर्भवती हो गई और उनका पुत्र हुआ भौम। भूमि से जो पुत्र हुए उनका नाम भौम, भूमि और भौम, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति का निकला दुर्भाग्य से। पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमाम। हम जब सुबह को उठते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमाम, कि हे पृथ्वी माता, जो आप विष्णु की पत्नी हैं और मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं लेकिन पैर रखे बिना नहीं हो सकता है कुछ, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, कोई श्लोक आदि हमें पता है तो वो हम बोल के फिर ये भी हम कहते हैं, फिर हम जमीन पर पैर रखते हैं। तो पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, भगवान की शुद्ध भक्त हैं, और स्वयं भगवान उनके पुत्र जो है वो असुर निकला। तो खैर, इसलिए उसका नाम हुआ भौमासुर। तो असुरों की प्रवृत्ति ऐसे ही होती है, सारे गलत काम करते हैं। तो भौमासुर ने जगह जगह से अनेक राजकुमारियों का अपहरण किया था और उनको बंदी बना दिया था अपने राजमहल में, प्राग ज्योतिषपुर नाम के स्थान में। तो जब उन्होंने चिट्ठियां लिखी श्री कृष्ण को कि आके हमें आप बचाइए, क्योंकि हम केवल आपसे ही विवाह करना चाहते हैं और किसी से नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा देवी के साथ वहां पर आए। उन्होंने प्राग ज्योतिषपुर को के जो किले के दरवाजे आदि थे वो सब भंग कर दिए, तोड़ दिए। मुर नाम के असुर को भी मार दिया, इसलिए उनका नाम हुआ मुरारी। और फिर भौमासुर का भी वध कर दिया और भौमासुर के पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसके बाद अब ये 16,108 राजकुमारियां थीं, और क्योंकि भौमासुर ने उनको हाथों से लेकर स्पर्श किया था, उनको जबरदस्ती अपहरण किया था, तो उस समय के प्रथा के अनुसार और कोई व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए तैयार न होता, तो क्या हो जाएगा। इसलिए फिर श्री कृष्ण ने कहा मैं ही आपसे सबसे विवाह कर लेता हूं। तो उनकी 8 रानियां तो थीं पहले से, रुक्मिणी देवी, जाम्बवती, सत्यभामा इत्यादि, और अब 16,100 रानियां हो गई जो वो वैसे भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थीं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बड़े धूमधाम से इन 16,100 रानियों को द्वारका ले आकर फिर वहां उनके उनके इनसे विवाह कर दिया। तो ऐसे नरकासुर के वध की घटना ऐसे बताया जाता है कि चतुर्दशी पर हुई, नरक चतुर्दशी। और फिर आगे उसके बाद वाली तिथि है अमावास्या, जो वास्तव में आज है, ये दीपावली का महोत्सव है। तो ये क्यों मनाया गया, क्योंकि भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या आए। जब पुष्पक विमान आया तो पुष्पक विमान में सारी वानर सेना बैठी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता देवी भी बैठे वहां पर, अग्नि परीक्षा वगैरह हो गई थी। तो वानरों की संख्या इतनी थी, इतनी बड़ी थी, फिर भी पुष्पक विमान में कोई समस्या नहीं हुई, सबके लिए स्थान था। ये वानर केवल बंदर नहीं है, ऐसे आजकल गलत एक धारणा है, और अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं मंकी गॉड, हनुमान को कहते हैं मंकी गॉड। हनुमान एक बंदर नहीं है साधारण, वानर संस्कृत शब्द है वानर, क्योंकि दिखने के लिए वो, मतलब वो वानर बंदर जैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत पूंछ लंबी है, मुख भी वैसा है, लेकिन मनुष्यों की तरह चलते हैं, मनुष्यों की तरह बात करते हैं, और बहुत तेज बुद्धि के हैं, बड़े विद्वान भी होते हैं उनमें से कई, जैसे हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान थे। तो बंदर जो है चारों पांव पर चलते हैं और दो पैरों पर खड़े होते हैं तो थोड़े समय के लिए, परंतु ये जो वानर थे चलते थे, और ये देवताओं के पुत्र थे, इंद्र, सूर्य, वायु इत्यादि, हनुमान तो वायु पुत्र हैं, तो ये देवताओं के पुत्र हैं और इतनी ही शक्ति आदि उनके पास थी, तो इनको साधारण बंदर नहीं समझ सकते हम। तो ये वानर क्योंकि ये मनुष्यों की तरह बात करते हैं, चलते हैं, व्यवहार भी मनुष्यों की तरह करते हैं, इसलिए एक द्वंद्व या प्रश्न उत्पन्न होता है, ये नर है या नहीं, नर वा अनर, ये नर है या अनर, अनर मतलब जो नर नहीं है, तो वानर क्या ये नर है कि नहीं है, इसे वानर वानर नाम लग गया, तो ये साधारण बंदर नहीं समझना चाहिए उनको, नहीं तो क्या हनुमान जैसे पर्वत उठा के ले आ सकते हैं, हनुमान जैसे समुद्र पार करके जा सकते हैं, कोई साधारण बंदर नहीं, असाधारण बंदर भी नहीं जा सकते हैं। तो खैर भगवान श्री राम वामन अपने पुष्पक विमान में सबको बिठाकर आ गए, परंतु थोड़ी देर पहले वो सीधे अयोध्या नहीं जा गए पुष्पक विमान में, थोड़ी देर पहले वो रुके और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान जाके परीक्षा करो भरत की, क्योंकि भरत तो अब राज कर रहा है ना अयोध्या में, तो वहां जाकर ये परीक्षा कर लो, भरत का चेहरा देख लो, यदि भरत के चेहरे के ऊपर लेश मात्र भी कोई एक लक्षण दिखाई पड़ा कि लक्ष्मण मेरे वापसी के खबर सुनकर, समाचार को सुनकर संतुष्ट नहीं है, तो मुझे आके तुरंत बताना, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा वापस, भरत को ही राज्य करने दूंगा। और हम सबको पता है कि वास्तव में भरत तो बिल्कुल निस्वार्थ थे, और उनका भ्रातृ प्रेम, भाई का प्रेम रामचंद्र के प्रति इतना शुद्ध और इतना तीव्र था कि स्वयं भरत ने राज नहीं किया, उन्होंने श्री राम के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा और राम श्री राम को ही राजा मानकर राज्य को संभाला और बहुत कड़े जो है तपस्या की 14 वर्षों में भरत ने। भरत बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे जब उन्होंने सुना कि श्री राम को वनवास में भेजा गया है और वो भी उनकी मां कैकेयी के द्वारा। तो खैर भरत शुद्ध थे पूरी तरह से, परंतु श्री राम परीक्षा करना चाहते थे। तो हनुमान जी वेश बदल कर गए वहां पे, और फिर या तो हनुमान अपने आप वैसे गए और भरत ने सोचा कि तुम कह रहे हो कि राम वापस आ रहे, बंदर के ऊपर विश्वास करें नहीं करें पता नहीं, बंदर बड़े चंचल होते हैं, परंतु ये तो साधारण बंदर नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा विद्वान लग रहा है ये। तो जब भरत ने खबर सुनी तो उनके चेहरे पे इतना आनंद प्रकट हो गया कि हनुमान जी वो बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि ये ढोंग नहीं कर रहे हैं। सचमुच भरत बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं ये समाचार सुनकर कि श्री राम अभी अभी लौटने वाले हैं अयोध्या। तो जब श्री राम तक ये खबर पहुंची हनुमान के द्वारा तो राम बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो अयोध्या में आए। जब अयोध्या में आए तो सायंकाल हो चुकी थी और अमावस्या है, तो अमावस्या में चांद की रोशनी भी नहीं होती है, तो इसलिए अयोध्या के निवासियों ने दीप प्रज्वलन किए, हर एक घर में सैकड़ों दीप लगाए और इस तरह से सारी अयोध्या जो है वो दीपावली दीप के दीपों से भर गई अयोध्या। आज या कल मैं पढ़ रहा था कि अयोध्या में इस बार लाखों दीप प्रज्वलित किए गए, कुछ कितने लाख पता नहीं याद नहीं है, 12 लाख दीप प्रज्वलित करके ये एक प्रकार का रिकॉर्ड हो गया है कुछ लोग कहते हैं। तो खैर ये इस दिन पर दीपावली के दिन पर ऐसे अयोध्या के निवासियों ने किया था, ताकि इसके पीछे क्या उद्देश्य था, एक कि श्री राम जब आएंगे तो अंधेरा ना हो, श्री राम को रास्ता दिखाई पड़े और सारे लोग उस प्रकाश के कारण श्री राम को देख पाए, और दूसरी बात थी कि वो आनंद को अपना व्यक्त करना चाहते थे क्योंकि श्री राम लौट कर आ गए वापस 14 वर्षों के बाद। तो देखिए अयोध्या वासी इन 14 वर्षों में बहुत बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उनके प्राण धन श्री राम अभी उनके साथ नहीं थे, वो भी वनवास में चले गए थे। तो अयोध्या वासी के वासियों के दुख के पीछे कारण क्या था? श्री राम से विरह, और ये इस बात को जानते थे। देखिए जैसे कोई रोग होता है ना हमें, तो डॉक्टर के पास वैद्य के पास जाते हैं, सबसे पहले वैद्य क्या करते हैं कि भाई रोग क्या है उसको निर्धारित करना चाहते हैं। जब तक रोग का निर्धारण न हो तो फिर औषधि या दवाई कैसे दे सकते हैं वैद्य? तो समस्या क्या है हमारे कष्ट के पीछे वो जानना आवश्यक है सर्वप्रथम। तो उसी प्रकार से यहां पर इस भौतिक जगत में हम सब दुखी हैं, एक के बाद एक जीवन में कष्ट आते रहते हैं, इसका को इनका कोई अंत ही नहीं है। एक कष्ट आए तो दूसरे दरवाजे पे खड़े हैं, कभी कभी ढेर सारे एक साथ भी आ जाते हैं, कभी अनुमति में नहीं लेते आऊं क्या आपके घर में, आ जाते हैं बिन बुलाए। तो हमारे जो कष्ट हैं दुख हैं उनके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे मूल कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं और हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान के बिना हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हमारा दुख इसलिए हो रहा है या कष्ट हमारे जीवन में इसलिए आ रहे हैं कि हमने भगवान को दूर रखा है, भगवान से विरह की भावना बिल्कुल नहीं है हमारे जीवन में। अयोध्या के निवासी जो है वो इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उनको दुख हो रहा था, और जब भगवान आए तो बस उनका जीवन प्रसन्न हो, फिर से उनका जीवन आनंद से भर गया। तो यदि हम भी इसी प्रकार से इसी भाव से दीपों को प्रज्वलित करेंगे तो हमारे जीवन में भी भक्ति और आनंद पुनः आ जाएगा। तो वैसे तो आजकल लोग दीप जलाते नहीं, वो दूसरी बात है, तो जलाना चाहिए कम से कम, और जब जलाते हैं तो इसके पीछे जो कारण है बड़े भक्ति भाव से जलाना चाहिए। भक्ति भाव से करेंगे, इसके पीछे जो कारण है, जो एक दर्शन है, जो लीलाएं हैं, वो यदि हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे। और जो सच्चा धन है भक्ति का, दिव्य ज्ञान का, वो हमें प्रदान करेंगे। तो जब हम भक्ति भाव से बाहर दीप को प्रज्वलित करते हैं तो भगवान भी एक दीप प्रज्वलित करेंगे। वो कहाँ होगा दीप? हमारे हृदय में। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमह नाशयाम यात्म भावस्थु ज्ञान दीपेन भास्वता। वो कहते हैं कि मैं अंतःकरण में परमात्मा के रूप में स्थित होकर मेरे भक्त के ऊपर कृपा देने के लिए उसके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता हूं, जिससे कि अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप में जलाता हूं अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए। और ये किस तरह का ज्ञान है? साधारण ये जब अर्थशास्त्र और भूगोल और इतिहास और गणित, इस तरह के ज्ञान का दीप नहीं है ये। ये भक्ति या दिव्य ज्ञान का दीप है जो भगवान हमारे हृदय में प्रज्वलित करते हैं। तो ये एक प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब हम भगवान श्री राम या श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं दीप जला के और उनको आरती के रूप में अर्पण करके, तब भगवान आदान प्रदान करते हैं उस प्रेम का और हमें फिर भक्ति प्रदान करते हैं। तो इन सब चीजों को जानना और इनको समाज में फैलाना ये बहुत आवश्यक है, ताकि लोग उत्सवों के पीछे जो मूल कारण हैं, जो इतिहास है इत्यादि, वो सब जान लें। और इसी दिन पर वृंदावन में एक बहुत विशेष लीला हुई थी, और वो है दामोदर लीला। संक्षेप में इस लीला का वर्णन थोड़ी देर में करूंगा, परंतु अमावस्या के बाद में आने वाले दिन और उसके बाद वाले आने वाले दिन की चर्चा संक्षेप में करेंगे। तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष का पहला दिन भी प्रतिपात है। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपात पहले दिन में गोवर्धन पूजा होती है, गो पूजा जो भी हम मनाएंगे यहां पर कल। और कल सनत कुमार प्रभु, जो बहुत वरिष्ठ हमारे ब्रह्मचारी भक्त हैं राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी से, तो वो आ रहे हैं, तो कृपया आके उनका प्रवचन भी आप सब सुनिए। कल अवश्य आइए आप सब। तो गोवर्धन पूजा, ऐसे बताया जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के आयु पर गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया था, 7 दिन और 7 रात। और इस प्रकार से उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र का मान भंग कर दिया था। तो गोवर्धन पूजा के साथ साथ बलि दैत्यराज पूजा भी है हमारे वैष्णव दिनदर्शिका में। तो अक्सर भक्त पूछते ही है क्या बलि दैत्यराज पूजा, कई हमारे वैष्णव दिनदर्शिका में ऐसे उत्सव है जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा की तुलना में बलि दैत्यराज पूजा को इतने बड़े पैमाने से नहीं मनाया जाता है। परंतु ये है क्या? ऐसे बताया जाता है कि इसी दिन पर बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों में शरण ग्रहण किया था। जब वामन देव वहां आए थे, उन्होंने 3 कदम जमीन मांगी थी और बलि महाराज ने कह दिया आप लीजिए 3 कदम, और बलि वामन देव ने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था 2 कदम में, 3रे कदम रखने के लिए स्थान नहीं था, तो बलि महाराज ने अपना सर प्रदान किया कि 3रा कदम आप यहां पे मेरे सर पे रखिए। तो आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन के प्रतीक हैं बलि महाराज। तो ऐसे बताया जाता है कि ये घटना इस दिन पर हुई थी। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, जिनका नाम है रसिकानंद प्रभु। वो श्यामानंद पंडित के शिष्य थे, उड़ीसा में खूब प्रचार करते थे, बहुत शक्तिशाली प्रचारक थे वो। उनका भी आविर्भाव दिवस है। और फिर द्वितीया में, उसके बाद वाले दिन में, भ्रातृ द्वितीया या यम द्वितीया या भाई दूज या अलग अलग भारत के प्रांतों में अलग अलग नाम से उत्सव जाना जाता है। यमराज और यमुना देवी भाई बहन हैं, ये जोड़ी बड़ी अद्भुत जोड़ी है, क्योंकि दोनों की दोनों भक्त हैं, महान भक्त हैं भगवान के, दोनों शुद्ध भक्त हैं, परंतु इनकी सेवा जो है बिल्कुल विपरीत है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों की सेवाओं में। यमुना देवी क्या करती हैं, उनका जल तो चिन्मय है, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, आप जानते यमुना देवी का श्लोक। तो चिदानंद भानो, भानु अर्थात जो भानु पुत्री है वास्तव में, सूर्यदेव की पुत्री है वो, तो उनका जल दिव्य है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है ये जल, साधारण जल नहीं है। और जो भी यमुना जी के जल का स्पर्श करता है, जो भी यमुना देवी की उपासना करता है, यमुना देवी का स्मरण करता है, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है, और वो भी वृंदावन के भाव में। यमुना देवी का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कृष्ण लीला में, वृंदावन लीला में। यमुना देवी ने सारे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दर्शन किया, और ऐसे बहुत सारी लीलाएं थीं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यमुना देवी के जल में किया, जैसे नौका विहार, फिर स्नान भी करते थे, कालिया दमन लीला, ऐसे बहुत सारी लीलाएं यमुना देवी से संबंधित हैं। तो यमुना देवी का क्या काम है, जीवों का उद्धार करना, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करना। दूसरी ओर इनके जो भाई हैं यमराज, उनका क्या काम है, जीवों को बद्ध अवस्था में रखना, उनको बांध के रखना, उनके कार्यों के फल उनको प्रदान करना। पाप किया है तो उनको दंड देना, पुण्य किया है तो पुरस्कार देना। किस तरह का पुरस्कार, भौतिक पुरस्कार, किसी को कोई धन देना, किसी को सौंदर्य देना, किसी को बुद्धि देना। तो चाहे पाप हो या पुण्य, दोनों प्रकार के कार्य हमें संसार में बांध के रखते हैं, बंधन के कारण हैं। इसलिए यमराज की सेवा है ये भगवान कृष्ण के लिए। ऐसा नहीं कि यमराज को बहुत आनंद होता है जीवों को दंड देकर। भगवान ने उनको आदेश दिया है कि मेरी ओर से ये तुम सेवा करो, जो मेरे धाम में आने लायक नहीं है उनको बद्ध अवस्था में रखो, वहां पर उनको दंडित करो, ताकि दंड के द्वारा वो सीख जाएंगे कि मेरे भक्ति के अतिरिक्त और कोई कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। तो दंड के पीछे भी यही कारण होता है ना, कि व्यक्ति सुधर जाए और सही रास्ते पर चले आए। तो जब यमराज भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए दंड देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि यमराज बहुत क्रूर हैं, वो हिंसा बहुत पसंद करते हैं, नहीं, भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। परंतु उनकी सेवा क्या है, दंड देना, बद्ध अवस्था में रखना, और यमुना जी की सेवा जीवों को मुक्त कराना। तो एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन वहां पर यमराज अपने बहन यमुना देवी को मिलने आए, तो यमुना देवी बहुत प्रसन्न हुई अपने भाई को देखकर। उन्होंने स्वागत किया और पिट्टी का आदि लगाया और प्रार्थना की यमराज की, और फिर उनको खूब खिलाया। तो यमराज इतने प्रसन्न हुए इतने प्रेम को स्वीकार करके अपनी बहन से, और इतना बढ़िया दावत दिया, भोजन प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि यमराज बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा, क्योंकि यमुना देवी ने एक वरदान भी मांगा, तो यमराज ने कहा कि इस दिन पर जो व्यक्ति अपने बहन के पास जाता है और उसकी सेवा करता है तो अवश्य वो मेरे चंगुल से मुक्त होगा, उसे अकाल मृत्यु कम से कम नहीं होगी और जल्दी से मुक्त हो जाएगा। ऐसे यमुना देवी ने यमराज से प्रार्थना की कि ये वरदान दीजिए। इसलिए ये भाई दूज कहा जाता है। दूज मतलब द्वितीय, दूसरा दूसरी तिथि, अपभ्रंश होकर द्वितीय से दूसरा, दूसरा से दूज ऐसे हो गया। तो फिर यमुना जी के कारण आज यमराज का ये वरदान सारे भाइयों के लिए है कि अपनी बहन के पास जाओ और बहनें जो अपने भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगी। जो भक्त हैं, जो बहनें भक्त हैं, वो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भाई की भक्ति की रक्षा हो और हर दृष्टि से रक्षा हो। और फिर भाई भी अपना प्रेम व्यक्त करते हैं अपने बहनों के प्रति। तो ये प्रथा है, तब से ये प्रारंभ हुआ है। वैसे चैत्र महीने में और एक भाई दूज है, लेकिन वो इतना लोकप्रिय नहीं है। मुख्य भाई दूज जो है वो इस दिन पर होता है। तो खैर, इस तरह से 5 दिन का उत्सव दिवाली का, त्रयोदशी से प्रारंभ होकर धनवंतरी त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली जो अमावस्या के दिन पर है, और फिर गोवर्धन पूजा, और उसके बाद ये यम द्वितीया। और इस तरह से 5 दिन साधारणतः लोग मनाते हैं। अब रही दीपावली के उत्सव पे और एक जो महत्वपूर्ण लीला हुई भगवान की, वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला तो हम सब मनाते हैं। यशोदा दामोदर की उपासना हम कार्तिक महीने में प्रतिदिन करते हैं, दीप दान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो संक्षेप में दामोदर लीला का वर्णन आज के दिन करना अनिवार्य है, होना ही चाहिए। तो एक बार माता यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। फिर उन्होंने सोचा, वैसे वो दही का मंथन कर रही थी, दही से मक्खन बनाना चाहती थी, मक्खन फिर कृष्ण को खिलाना चाहती थी, बचे हुए मक्खन से घी बनाना चाहती थी, यही घी बनाने की पद्धति होती है। तो जब कृष्ण आए उनके पास कि मुझे भूख लगी है, तो माता यशोदा ने स्तनपान कराना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि अचानक चूल्हे पे रखे हुए दूध, अभी वो दूध उबल रहा है, तो जल्दी से श्री कृष्ण को नीचे रख दिया और माता यशोदा वहां पर गई दूध को वहां से चूल्हे से निकालने के लिए। उधर श्री कृष्ण को आया बड़ा गुस्सा कि मैं अभी तक, मेरी भूख अभी तक मिटी नहीं है, तो मेरी माँ मुझे क्यों इस तरह से छोड़ के चली गई। तो उठे और दूसरे उस कमरे में जो मक्खन आदि दही के पात्र थे, मटके थे, घड़े थे, उनको पत्थर से तोड़ दिया, मक्खन खाने लगे, फिर थोड़ा मक्खन लेकर भाग गए। पता चला कि अब मैंने जो कार्य किया है वो सही नहीं है, अब आगे चल के अब क्या होगा, मुझे दंड मिलेगा, तो डर के मारे वहां से भाग गए कृष्ण। और वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्री कृष्ण का ये डर बनावटी नहीं था, ये सच्चा डर था, क्योंकि लीला को और पोषण देने के लिए, लीला की मिठास को बढ़ाने के लिए, रस वृद्धि के लिए, तो श्री कृष्ण भागते हुए चले गए। और फिर माता यशोदा आई और देखा कि यहां क्या कांड हो चुका है, यहां तो सब जगह ये मटके टूटे हुए हैं, दही मक्खन यहां वहां सब गिर गया है। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये कृष्ण का कार्य है निश्चित ही, और तो कोई था नहीं यहां पर। तो माता यशोदा ढूंढते हुए गई, हाथ में छड़ी लेकर गई कि वो बदमाश कहां गया। इधर उधर गई, एक कमरे में जाके क्या देखा कि वहां एक उखल है, संस्कृत में उलूखल बोलते हैं, वो उलूखल उल्टा रखा हुआ था। तो श्री कृष्ण उसको खींच कर लिया था और उसके ऊपर खड़े थे, और वहां जो घड़े थे, मटके थे दही मक्खन के, उसको भी तोड़ के वहां से भी मक्खन ले रहे थे और बंदरों को बांट रहे थे। ये बंदर थे, परंतु वृंदावन के बंदर, इसलिए साधारण बंदर ये भी नहीं है। कल हम जब गोकुलधाम जा रहे थे, गोकुलधाम जाते समय मलप्रभा नदी आती है, तो वहां नदी को पार करते वहां ढेर सारे छोटे छोटे बंदर दिखाई देते हैं। ये साधारण बंदर है, लेकिन वो गोकुलधाम में जाएंगे तो वो भी असाधारण बंदर बन जाएंगे। वही ना कुछ प्रसाद पा लेंगे। तो खैर बंदरों को बांट रहे थे, और बंदरों को बांटते बांटते इधर उधर देख रहे थे, कहीं माँ पीछे तो नहीं आ रही मेरी। और जब माता यशोदा को देखा कि आ रही है, तो डर के मारे उखल से कूद पड़े और भागने लगे। माता यशोदा उनके पीछे पीछे भागने लगी, क्योंकि उनका शरीर थोड़ा भारी था, इसलिए इतनी तेजी से नहीं भाग पाई। फिर भी पूरा प्रयास करके भागी और अंततः बड़े मुश्किल से श्री कृष्ण को पकड़ लिया। वो श्री कृष्ण जिनको कोई नहीं पकड़ सकता, जो मन के गति से भी तेज चल सकते हैं, उन कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़ लिया और पकड़ के पूछा कि तुमने चोरी की। जब श्री कृष्ण ने माता यशोदा का चेहरा देखा तो कृष्ण को डर लग गया। कृष्ण के आंखें आंसू से भर गए और कृष्ण के चेहरे पे भय दिखाई पड़ा। तो माता यशोदा ने सोचा कि हृदय में करुणा आ गई कि ठीक है, छड़ी से मारूंगी नहीं, बेचारा बच्चा डर गया है, तो छड़ी नीचे फेंक दी। लेकिन कहा कि दंड दिए बिना इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माता यशोदा चाहती थी कि ये बच्चा सुधर जाए, ताकि आगे चल के ऐसे हरकत न करे जिसके कारण बच्चे को कष्ट हो जाए। अभी यदि दंड नहीं दिया जाए तो ये बच्चा आगे चल के बिगड़ जाएगा, इसलिए मां होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि इसको सही दंड दें। तो फिर सोचा कि चलो क्या करूं, कहा किस किस प्रकार का दंड दूं। फिर पास में उखल को देखा, हाँ ऐसे ही करूंगी, उखल को बांध लूंगी। फिर रस्सी लाई अपने घर से और श्री कृष्ण को वहां रखा, और उखल से के पास में रख के माता यशोदा कृष्ण को बांधने लगी। जितनी रस्सी माता यशोदा लाई थी, वो कृष्ण को बांधने के, एक छोटे से बच्चे को उखल से बांधने के लिए पर्याप्त था। परंतु आश्चर्य की बात यह हो गई कि जब माता यशोदा ने बांधने का प्रयास किया, वो रस्सी दो उंगली कम पड़ गई। और फिर माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अरे मेरे बच्चे की कमर जो है, इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है और उखल भी इतना बड़ा नहीं है, तो रस्सी तो इससे लंबा है, लेकिन फिर भी दो उंगलियां कम क्यों पड़ गईं। फिर भी माता यशोदा ने जाके और रस्सी प्राप्त कर ली, पहले रस्सी से बांध ली, फिर से बांधने का प्रयास किया श्री कृष्ण को, फिर भी रस्सी दो उंगली कम पड़ गई। फिर से माता यशोदा ने रस्सी लाकर पुरानी रस्सी को बांध दी, फिर भी दो उंगली कम पड़ गई। ऐसे करते करते माता यशोदा के पसीने छूट गए। उधर सारे गोपी आंखें मजाक देख रही थी कि अरे यशोदा तुम नहीं बांध पाओगे, तुम्हारा लाला जो है ये पता नहीं कहां से आया है, इसको बांध नहीं पाओगे तुम। तो माता यशोदा भी हैरान हो गई। मैं तो एक माँ का जिद होता है, जब माँ जिद करते मुझे करना वो करना ही है, इसको बांध के ही रखूंगी जो भी हुआ। तो फिर भी रस्सी ला ला कर गोपियों ने भी अपने घरों से भी रस्सी ला, चलो ये भी ले लो। लेकिन जितना भी वो बांध रही थी, दो उंगलियां कम पड़ रही थी। अंततः माता यशोदा का प्रयास देख कर कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया और वो तैयार हो गए बंधने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता यशोदा के रस्सी से कृष्ण नहीं बंधे गए, श्री कृष्ण बंधे गए तो माता यशोदा के प्रेम से बंधे गए। भगवान को कोई भौतिक वस्तु बांध नहीं सकती है, केवल प्रेम से भगवान बंध सकते हैं। और प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बैठे रहे हाथ के ऊपर हाथ रख के कि प्रेम है हृदय में और भगवान ऐसे प्रेम से बंध जाएंगे, ऐसे प्रेम नहीं होता। जब प्रेम वास्तव में हृदय में होता है तो उसे अपने काया में, अपने मन में, मन के अतिरिक्त अपने काया के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा व्यक्त करना चाहिए। मैंने एक बार बताया होगा आप सबको कि एक बार मैं प्रवचन दे रहा था, प्रवचन के बाद एक माताजी ने प्रश्न पूछा कि सेवा की क्या आवश्यकता है। आप कहते हैं सेवा करनी चाहिए भगवान की, लेकिन मैं तो, मेरे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो हृदय में जब प्रेम है तो सेवा करने की आवश्यकता क्या है। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चे हैं? बोला हाँ। तो बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन बच्चे जब छोटे थे और आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे, और बच्चे को जब भूख लगी और बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो, क्या आपने कहा कि बेटा तुम्हारे प्रति हृदय में बहुत प्रेम है लेकिन अभी खिलाना नहीं चाहती हूँ तुम्हें मैं, ऐसे कहा आपने? नहीं, प्रेम थे आपके हृदय में, इसलिए आपने, आप कार्य में मग्न हो गई, आपने कुछ पकाया, कुछ खिलाया बच्चे को। बीच रात में बच्चा बीमार हो जाता है और रोने लगता है, आप कहते हृदय में बहुत प्रेम है लेकिन बच्चे को देखूंगी नहीं, ऐसे प्रेम का क्या मतलब? इसका मतलब है प्रेम नहीं है, केवल कहने के लिए प्रेम है। तो वास्तविक प्रेम वो होता है जो कि हम कृति में लाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में भक्ति शब्द का अनुवाद डिवोशनल सर्विस का, सर्विस मतलब सेवा, भक्तिमय सेवा। तो इस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं भगवान की तो धीरे धीरे से हृदय शुद्ध हो जाता है। बिना प्रयास के भगवान नहीं मिलेंगे। तो इससे हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि केवल हमारे प्रयास से भगवान मिल जाएंगे, नहीं, हमारा प्रयास आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। हमारे प्रयास के अतिरिक्त हमें भगवान की कृपा चाहिए। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है। यदि हम कहें कि केवल भगवान की कृपा पर निर्भर रहेंगे और हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। और यदि हम सोचेंगे कि भगवान की कृपा नहीं, मैं अपने साधना के बल पे, अपने तपस्या के बल पे भक्ति प्राप्त करूंगा, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा स्वयं, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों चीजें आवश्यक हैं। और जिन दो उंगलियों से वो रस्सी कम पड़ गई, वो ये दो चीजों के प्रतीक हैं, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। तो जब माता यशोदा प्रयास कर रही थी तब तक भगवान की कृपा नहीं आई थी, लेकिन जब भगवान की कृपा आ गई और माता यशोदा का प्रयास था ही, तो फिर वो बंद गए। तो ये एक चीज है जो हम सीख सकते हैं, एक बहुत ही सीखने लायक वस्तु इस लीला के द्वारा। तो खैर, माता यशोदा ने बांध तो लिया और फिर माता यशोदा अपने अन्य कार्यों को पूर्ण करने के लिए दूसरी जगह चली गई। उधर श्री कृष्ण वैसे भी बाल रूप में हैं, बच्चे वैसे भी नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, तो इधर उधर देख रहे थे। फिर उनकी दृष्टि पड़ी दो यमल अर्जुन वृक्षों पर और उन्होंने सोचा, हाँ अच्छा, ये तो मेरे भक्त हैं, नारद जी ने इनके ऊपर कृपा की थी, तो मैं इनका उद्धार करूंगा। तो इनके पीछे इतिहास ये है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव अनेक अपने महिलाओं के साथ में रमण कर रहे थे, ऊपरी लोकों में कहीं नग्न अवस्था में थे, और क्योंकि अपने ऐश्वर्य और अपने पद से उन्मत्त हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि को ठीक से सम्मान देना ठीक नहीं समझा। नारद मुनि वहां से जा रहे थे, जो महिलाएं थी वहां पर उन्होंने अपने आप को तो ढक लिया ठीक से, परंतु नलकूवर और मणिग्रीव इतने अपने ऐश्वर्य और पद से उन्मत्त थे कि वो वैसे के वैसे रह गए। तो नारद मुनि ने देखा, उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई कि अरे ये बेचारे नलकूवर मणिग्रीव देखो, ऐसे ऐश्वर्य और पद को प्राप्त करने से क्या दुर्दशा होती है, व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, तो मुझे करुणा प्रदान करनी होगी इनको। तो जब ऐसे महान भक्त नारद मुनि जैसे करुणा करना चाहते हैं तो अनेक तरीकों से कर सकते हैं। कभी कभी वो प्रेम से कर सकते हैं, कभी कभी शाप देके कर सकते हैं। परंतु शाप दें या वरदान दें, शुद्ध भक्तों के द्वारा दी गई चीजें हमेशा करुणा से उत्पन्न होती हैं और उनका लाभ जो है अच्छा होता है, मंगलमय होता है। तो नारद मुनि ने इनको कहा कि तुम निर्वस्त्र रहना चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है नग्न अवस्था में रहना, तो ठीक है तुम पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ तो वस्त्र नहीं पहनते, पर ऐसे ही सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहते हैं गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, तो ठीक है तुम बन जाओ पेड़। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिनके मन में अपने ऐश्वर्य पद आदि का घमंड होता है, ऐसे घमंड का फल क्या होता है कि अगले जन्म में उनको दरिद्र होना पड़ता है। तो धन और ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने के बाद जो इसका मन में अभिमान बहुत हो जाता है, मैं बहुत बड़ा हूं, तो फिर क्या होता है, उसको अगले जन्म में गरीब होना पड़ता है। हो सकता है उसी जन्म में भी हो जाए, और नहीं हो तो कम से फिर अगले जन्म में गरीब हो ही जाएगा। और क्योंकि ऐसे व्यक्तियों ने नग्न अवस्था में किया था, तो नारद मुनि ने कहा तुम वृक्ष बन जाओ। परंतु नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, तो उनका जो शाप है उससे कुछ भला होना था नलकूबर और मणिग्रीव का। नारद मुनि जानते थे कि आगे चल के द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो इनका उद्धार करेंगे। तो नलकूबर और मणिग्रीव यमल अर्जुन वृक्ष बने और भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज के घर के आंगन में बने। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि यमल अर्जुन वृक्षों के ऊपर पड़ी और उन्होंने सोचा चलो इनका उद्धार करने का समय आ गया है, मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि के शब्दों का मान रखना चाहिए। तो उखल को खींचते खींचते ले गए। वैसे उखल तो बहुत भारी था, एक छोटे बच्चे की खींचने की बात नहीं थी, फिर भी नारद मुनि खींचते 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 बालकृष्ण उस उखल को खींचते खींचते ले गए। दोनों वृक्षों के बीच में आए, उखल दोनों वृक्षों में अटक गया। नारद भगवान कृष्ण ने एक छोटा सा हल्के से झटका दिया और झटका देने के कारण तो दोनों वृक्ष गिर पड़े धड़ाक से, बहुत जोर से आवाज हुई। आवाज सुनकर सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए आए, क्या हुआ, और ये दृश्य देखा कि दोनों ये बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिर पड़े हैं और श्री कृष्ण बिल्कुल उनके बीच में है। तो सारे ब्रज गोप चार गोपगण थे, उनको आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, हमारा कृष्ण बच ही कैसे गया। तो उन्होंने वहां अन्य जो बच्चे थे जो खेल रहे थे उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, कृष्ण ने जो है उखल खींच लिया और ये उखल अटक गया दोनों वृक्षों के बीच में, और बाल कृष्ण ने खींच लिया, दोनों वृक्ष गिर पड़े। तो गोपों ने सोचा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये इतना छोटा बच्चा है, इतने बड़े बड़े तगड़े वृक्षों को थोड़ी ना गिरा सकता है ये। फिर भी थोड़े गोपों को मन में संशय हुआ, हो सकता है ये बच्चे के बारे में क्या कुछ कहना समझ में नहीं आता है, इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया, पूतना का वध कर दिया, शकटासुर त्रिणावर्त आदि का वध कर दिया, ऐसे अद्भुत कार्य इस बच्चे ने कर दिखाए हैं, क्या पता हो भी सकता है कि ये छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। उधर नंद बाबा आ गए, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, और फिर वहां देखा कि श्री कृष्ण बंधे हुए हैं उखल से, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, किसने किया ये, कृष्ण को ऐसे बांधा किसने इस तरह से। जब उनको बताया गया यशोदा माता ने बांध लिया है, तो बिल्कुल चुप हो गए। फिर क्या बोलते हैं अभी, कुछ नहीं कहा, होता है ना ऐसे कभी कभी। आप ऐसे गृहस्थ भक्त हैं, आप जानते हैं। तो फिर नंद महाराज ने कुछ जल्दी से फिर कृष्ण को छुड़वा दिया, रस्सी खोल दी। लेकिन इसके पहले एक अद्भुत घटना ये हुई थी, जो बच्चों ने सुनाया बड़ों को, लेकिन बड़ों ने विश्वास नहीं किया, सोचा बच्चों की बड़बड़ाहट है। उन्होंने कहा जैसे ही दो वृक्ष धड़ाक से गिर पड़े तो उनमें से दो ऐसे तेजस्वी रूप वाले लोग बाहर आए और करबद्ध अवस्था में हमारे कृष्ण के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, और फिर वो उड़ के चले गए वापस। तो गोपों ने सोचा ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन वास्तव में हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नलकूवर और मणिग्रीव को अपने पूर्व शरीर प्राप्त हो गए, जो उनके ऊपरी लोकों के शरीर थे वो प्राप्त हो गए, और बड़ा तेजस्वी रूप था उनका, और उनके होश अब पूरी तरह से ठिकाने आ गए थे। अब वो भक्त भी बन गए भगवान की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हम आपके चरण कमलों का नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें केवल आपके सुंदर रूप को देखें, हमारे कान केवल आपकी कथाओं को सुनें, हमारे जो हाथ हैं वो केवल आपकी आपको प्रसन्न करने वाले कार्य करें, और हमारे जीभ जो है उससे केवल हम आपकी वाणी आपके बारे में कुछ कहें, इस तरह से हमारा मन भी केवल आपके विचारों में मग्न रहे, हमारी सारी इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि केवल आपकी सेवा में लगे रहें, यही हमारी प्रार्थना है, और हम आपके नारद मुनि जैसे भक्तों के हम भक्त हैं, हम दासों के दास हैं आपके। ऐसे नलकूवर मणिग्रीव ने यह प्रार्थना नहीं की कि हमें धन दीजिए भोग दीजिए, अब वो भक्त बन गए थे, इसलिए उन्होंने जो याचना की वो भी भक्ति की याचना थी। हम रोज कार्तिक महीने में दामोदराष्टकम गाते हैं और उसमें सातवां श्लोक ये है, कुबेरात्म जाओ बद्ध मूर्ति अवयद्वत त्वया मोचितौ भक्ति भाजम कृतौ च। यहां पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे भगवान दामोदर, हे कृष्ण, कुबेर आत्मजौ, कुबेर के आत्मज, आत्मज मतलब उनके पुत्र, और जौ द्विवचन। तो हे भगवान दामोदर, कुबेर के जो दो पुत्र थे नलकूवर मणिग्रीव, त्वया मोचितौ भक्ति भाजाओं कृताओ च, आपने उनको भक्त बना दिया, उनको अपने पेड़ के शरीर से मुक्त कर दिया। त्वया मोचितौ, मोचितौ अर्थात मुक्त करना, और भक्ति भाजाओ च, आपने उनको भक्ति भाजाम बना दिया, ऐसे व्यक्ति बना दिए जो केवल भक्ति चाहते हैं आपकी और कुछ नहीं चाहते हैं, और स्वयं आप बद्ध मूर्ति थे, आप उखल से बंधे हुए थे। कुबेर आत्म जाओ बद्ध मूर्ति यद्वत्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, और इसलिए तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे ह। तो जिस प्रकार से आपने कुबेर के पुत्रों को प्रेम भक्ति प्रदान की, उसी प्रकार से हमें भी आप प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे न मोक्ष की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न अन्य किसी भी भौतिक चीज की कामना है, मुझे केवल आपके प्रेम भक्ति चाहिए। तो ऐसी प्रेम भक्ति मुझे भी प्रदान कीजिए जैसे कि आपने नलकूवर और मणिग्रीव को प्रदान की थी। तो ऐसे ये प्रार्थना, तो आज हमें भी भगवान दामोदर के चरण कमलों में ये प्रार्थना करनी चाहिए। जब नलकूवर मणिग्रीव जैसे भक्तों लोगों को आपने प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी, तो हमें भी आप कृपया वही भेंट इस कार्तिक महीने में और विशेष रूप से इस दामोदर लीला के दिवस पर आप प्रदान करें। फिर ये चले गए वापस अपने लोक में और वो शुद्ध भक्त बन गए। उधर सारे ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को आलिंगन किया, अरे हमारा कान्हा बच गया बच गया। तो ये दीपावली के दिन ये सुंदर लीला हुई थी और ये सारे महीने में हम इस लीला का स्मरण करते हैं दामोदर अष्टकम का गीत गा के। तो इसी दिवस पर ये प्रार्थना हमें याद रखनी चाहिए। बस भगवान से यही एकमात्र चीज है मांगने के लिए, प्रेम भक्ति, और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए सच्चा धन है, चाहे वो धनतेरस हो, नरक चतुर्दशी हो या और कोई भी दिन हो, असली प्रार्थना हमें ये करनी चाहिए। श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री दामोदर लीला की जय, श्री दीपावली महोत्सव की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो आज के सुंदर प्रवचन के लिए महाराज जी का धन्यवाद।
क्षमा कीजिए, मैं भूल गया बताने, वैसे पिछले कई हफ्तों में, लगभग डेढ़ महीने पहले, हमारे एक भक्त समाज के वरिष्ठ भक्त श्रीमान सुधाकर पिशे, जो कि हमारे आदि गोकुलानंद प्रभु के पिता हैं, उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। बहुत ही सात्विक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने परिवार के सदस्यों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन करते थे। उन्होंने अपना देह लगभग डेढ़ महीने पहले त्याग किया। तो आज के दिन दीपावली के दिन और कार्तिक महीने में हम भगवान श्री दामोदर से और श्री राधा गोकुलानंद से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी कृपा श्रीमान सुधाकर पिशे के ऊपर करें, ताकि वो अपने अगले जीवन में जहाँ भी हो श्री श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमलों में ही आश्रित हों और अपने भक्ति के जीवन को वो आगे बढ़ाएं। और ठीक उसी प्रकार से और एक भक्त हैं हमारे भक्त समाज की, अनुराधा सखी माता जी, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की शिष्या थीं और राजभोग सेवा करती थी यहाँ पर नियमित रूप से, यहाँ पर फूलों की माला बनाने की सेवा भी करती थीं और रविवार के दिन यहाँ पर रसोई में सेवा करने के लिए आती थीं। 2004 में दीक्षित थी, अनेक वर्षों से सेवा करती थी मंदिर में। उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने भी लगभग 15 दिन पहले अपना शरीर त्याग दिया। तो उनके लिए भी हम श्री श्री राधा दामोदर और श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरण कमलों में सदैव रखें और जहाँ भी हों कृष्ण की तीव्रता से भक्तिमय सेवा वो करती रहें। हरे कृष्णा।